प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग छठा, लेक्चर नंबर 468। ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्ट गाति कर्मणे प्रणमन करू धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने वड़ी शेष तीर्थंकर अने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान जुग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु वली हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ सिद्धने य नमस्करण करिए रीते गणधर ने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनी जे नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा लिखित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 42 पर हम आगे 42 ऊपर से दूसरी पंक्ति जहां से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, देखो ये 129 गाथा की टीका यहाँ चल रही है। यहाँ तो द्रव्य सामान्य की बात होने के पश्चात अभी द्रव्य विशेष की बात चल रही है। छह द्रव्यों में जो विशेषता है उसकी अपेक्षा से द्रव्यों के भेद बताए। पहले में पहले जीव और अजीव ऐसे दो भेद बताए। जीव में एक आत्मद्रव्य ही है और अजीव में 5 अचेतन द्रव्य है। उसके बाद क्या देखा था, उनका रहने का ठिकाना लोक अलोक उसकी अपेक्षा भेद किए थे। और अब क्या कर रहे हैं, हाँ जिसमें भाववती और क्रियावती दोनों ही शक्तियां हैं, ऐसे दो द्रव्य है जीव और पुद्गल, और बाकी चार द्रव्य में मात्र केवल भाववती शक्ति है, क्रियावती शक्ति नहीं है। अब यहां से पढ़ते हैं, देखिए ऐसे परमात्मा तीन लोक के नाथ की अध्यात्म की बात, हाँ मूल बात के राग से भिन्न भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति, ये बात लोगों को ख्याल में नहीं आता क्योंकि राग के साथ इतनी एकत्व बुद्धि पड़ी है। शरीर से जुदा हूं ये तो बात सामान्य विचार करने वाले को भी पता चलता है क्योंकि उसके लिए तो कुछ जिनागम का अभ्यास नहीं भी हो तो कहते ना जीव जुदा यानी वो तो शरीर जुदा है और ये शरीर पड़ा रहता है जीव निकल गया, ये तो सामान्य अन्य भी लोग कहते हैं, अन्य मति भी कहते हैं। परंतु ये तो राग से जुदा जो त्रिकाल कायम रहने वाला जो जीव स्वभाव है वह मैं हूँ, वह आत्मा है, और राग से यह मैं जुदा हूँ ये बात ख्याल में नहीं आती। भेद ज्ञान की तो मूल चीज है, ये तो रहस्य है इतना ही, और कोई बहुत उसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है. क्या कहते हैं मूल बात कि राग से भिन्न भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति. ऐसा सुनकर तुरंत भूल जाए वह लायक नहीं. यानी वो तो क्योंकि भूल जाने की बात नहीं ना. अरे राग तो हर समय हो रहा है, ज्ञान भी चल रहा है, तो मैं राग से मैं जुदा हूं ये कोई केवल रटने की बात तो है ही नहीं है, ख्याल में लेने की बात थी. और ख्याल में रियली ले ले तो भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी. क्योंकि वो तो तुरंत भूल जाता है. कोई प्रवचन सुन के आया है, वहां कोई स्टोरी बिरी होती है तो वो तो ख्याल में आता है, वो बिल्कुल याद रहता है. वो किसके लिए दिया था, कौन सा सिद्धांत, अरे वो पता नहीं, वो स्टोरी बहुत अच्छी थी.
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु स्वरूप क्या है कि तू राग से भिन्न है, और ये सुनकर भी जो वह भूल जाता है, यानी वो मैं राग से भिन्न हूँ ये बात भूल जाता है. और कहीं कहीं लोग ऐसा भी कहते हैं अरे आपने केवल शुभ को ही है कहा, अशुभ को नहीं कहा, यानी वो शुभ रूप में हूँ, शुभ करने जैसा है, ऐसा उस जीव की मान्यता है. तो कह रहे कि वो बराबर नहीं है. वो तो आगे तो लिखा है वो तो सुनने के लायक नहीं, यानी उसको उपदेश भी मत दो, ऐसा बताए. अभी पढ़ो आप.
हाँ देखो, ऐसा सुनकर तुरंत भूल जाए वह लायक नहीं. लायक नहीं, नहीं सुनने के लायक नहीं. ऐसा पाठ है, अध्यात्म की बात सुनने के लायक नहीं. वो आता ना तस्य देशना नास्ति वगैरह, सुना कि नहीं? वो बात अलग है. तस्य देशना नास्ति, उसको तो देशना तो है ही नहीं है, वो तो सुनने लायक नहीं, ऐसा आता है. प्रेम है उसमें एकत्र. हाँ राग का राग तो है सुनने वाले को भी है, परंतु सुनकर भी वो तो ख्याल भी नहीं आता उसको, वो उसको एंटर ही नहीं होती उसके दिमाग में, घुसता ही नहीं है. हाँ क्योंकि सुनकर तुरंत भूल जाए वह लायक नहीं, सुनने के लायक नहीं, ऐसा पाठ है. अध्यात्म की बात सुनने के लायक नहीं. ध्यान दूसरी जगह हो और यह सुने तो ख्याल नहीं रहता. क्या कहते हैं अध्यात्म की बात है ना, आत्मा के अनुभव की बात है. शास्त्र में तो व्यवहार कथन बहुत आते हैं, तो वहां तो ज्ञानी के कैसे कैसे कौन से गुणस्थान में कौन से भाव आते हैं, कौन से व्रत आदि, उसका वर्णन भी शास्त्र में आता है, तो वो बराबर ख्याल में रहता है. खाने पीने की बात है वो बराबर सावधानी से सुनता है. पर ये जो बात आती है वेद ज्ञान की, अध्यात्म की बात, तो कहते वो कहीं तो अन्य उसका ध्यान कहीं चला जाता है, वह लायक नहीं, ऐसी बात है. धवल जयधवल आदि ये 35 नहीं 39 है. 39 पुस्तकें है. एक एक पुस्तक 10-12 रुपए का, ये रुपए पर मत जाना. 500-500 पेजेस की एक एक पुस्तक है ना, ढेर पड़ा है. हम तो सब पढ़ सके नहीं. आहा हा, ऊपर ऊपर से ऐसी कोई सत्य बात हो तो पढ़ लेते हैं. अपने यहाँ तो सौभाग्य रहा अपना कि ये सारी 39 पुस्तकें हो गए. एक बार अध्योपन शुरू किया था 2003 में, तो 2003 से 2011 में अपना समाप्त हुआ ना, कहा 2011 तक चले. यानी वो तो सामूहिक स्वाध्याय, इसे स्वयं पढ़ लेना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है. और अभी दूसरी बार हो रही, दूसरी बार में 16 और ये अभी पांचवा पुस्तक चल रही 21.
जय धवला रह गया.
जय धवला अभी इसके बाद लेंगे, पहले हम षटखंडागम करना है, इसलिए लास्ट टाइम में पढ़ा था पहले धवला फिर जय धवला फिर महाधवला लिया था. समय ज्ञान चंद्रिका अभी ऐसा लगता है वो जीवखंड पड़े क्या. उसमें तो बहुत अच्छा विस्तार से दिया है. ये सभी पुस्तकें जीवकांड कर्मकांड लब्धिसार, क्योंकि हमने देखा जयधवला भी पढ़ते हुए बार बार हम लब्धिसार निकाल के पढ़ते थे, उसमें कंटिन्यूएशन में दिया है. जयधवला में अंतिम वो तो सूक्ष्म श्रेणी की क्षपक श्रेणी की बात की है, परंतु उसका अर्थ लगाना पड़ता है. इन श्रेणी के सभी गुण स्थानों की बात वहां पर है। क्योंकि उसमें क्या है, चर्चा है, और मूलभूत बात, बेसिक बात तो समय ज्ञान चंद्रिका जीव कांड कर्म कांड लब्धि सार में, और उसमें तो हायर लेवल पर उसकी चर्चा ज्यादा है। यहां कहते हैं आत्मा और पुद्गल भाव वाले और क्रिया का लक्षण परिस्पंद वाले दो द्रव्य है, वहां समस्त ही द्रव्य भाव वाले है, अर्थात छह द्रव्य परिणमन वाले हैं, क्योंकि परिणाम स्वभाव वाले होने से, छह द्रव्य पलटने के स्वभाव वाले होने से, परिणमन उसका स्वभाव है पलटना अवस्था में, ऐसी बातें परिणाम के द्वारा अन्वय अर्थात स्थायीपने रहना ध्रुव, और व्यतिरेकों को यानी उत्पाद वेपने होना, ऐसे होते हुए क्या कहते हैं, परिणाम के द्वारा बताया, परिणाम के द्वारा ही ध्रुव रहते हैं, परिणाम के द्वारा ही उत्पाद होता है, और परिणाम के द्वारा ही व्यय होता है। आवाज कुछ गूंज रही है, हाँ। क्या कहते हैं, परिणाम के द्वारा अन्वय, अन्वय का अर्थ है स्थायीपने रहना, स्थायीपने रहना का अर्थ है ध्रुवपने रहना कायम, और व्यतिरेकों को, व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है, यह वह नहीं है, अन्य अन्य होना, यानी उत्पाद वेपने होना, ऐसे होते वे हुए वे ने द्रव्य बताए ना, समस्त ही द्रव्य, वे ने क्या, समस्त द्रव्य, समस्त द्रव्य परिणामों के द्वारा क्या हो रहे हैं, उत्पन्न होते हैं। मूल ग्रंथ में फुटनोट में दिया है अन्वय स्थायीपने को और व्यतिरेक उत्पाद तथा व्ययपने को बतलाते हैं, फिर वही वाक्य दोहराते हैं, परिणाम के द्वारा उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं यानी स्थायी रहते हैं और नष्ट होते हैं। किसकी बात है, किसकी बात, द्रव्यों की, छह द्रव्यों की, छह द्रव्य पुद्गल तो भाव वाले होने के अतिरिक्त यानी इन एडिशन क्रिया वाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पंद स्वभाव वाले होने से, क्षेत्रांतर की क्रिया वाले यानी और भाव वाले होने से, परिस्पंद नाम परक्रियांतर होने से, परिस्पंद के द्वारा पृथक पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं। यह संघात और भेद की बात आई थी ना, मूल ग्रंथ में फुटनोट में अर्थ दिया है, पृथक पुद्गल कंपन के द्वारा एकत्रित होते हैं, भिन्न परमाणु हो परंतु कंपन से क्षेत्रांतर से दूसरे परमाणु के साथ एकत्व हो जाता है, एकत्व नाम साथ में आ जाए, आहा हा। पृथक पुद्गल कंपन के द्वारा एकत्रित होते हैं, वहां भिन्नपने से नष्ट हुआ, परमाणु पुद्गल जुदा था, वह दूसरे के साथ जुड़ गया तो भिन्न था वह नष्ट हुआ, क्या कहा, भिन्नपना निकल गया, क्योंकि जुड़ गए ना, जुड़ना हुआ यानी भिन्नपना जो जुदा था वो जुदापना निकल गया और इकट्ठापना आ गया, यही कह रहे यहां पर के भिन्नपने से नष्ट हुआ यानी भिन्नपना नहीं रहा और इकट्ठे हो गए, परमाणु पुद्गल जुदा था वह दूसरे के साथ जुड़ गया तो भिन्न था वह नष्ट हुआ, भिन्न था वह नष्ट हुआ, पुद्गल परमाणु नष्ट हुआ ऐसा नहीं, वो भिन्नपना निकल गया, यहां उत्पन्न हुआ, यहां से नष्ट हुआ, संयोग से उत्पन्न हुआ, समझ में आया। जैसे यह देखो, यह कंपन और यह कंपन, अब इसके साथ संयोग हुआ तब संयोग से उत्पन्न हुआ, भिन्न पने से नष्ट हुआ और टिकने से कायम रहना, यानी संयोग की अपेक्षा से हम कहेंगे उसको उत्पन्न हुआ कहेंगे, वो भिन्न पने की अपेक्षा से वो नहीं रहा अभी और कायम टिका हुआ है, उस अपेक्षा से वो ध्रुव है। अरे ऐसी सूक्ष्म बातें, यहां तो अज्ञानी को क्षण क्षण में पल पल में ये करूँ ये करूँ ये बनाऊ इसका करूँ इसका करूँ चलता है। वर्तमान में तो साधु उपदेश ही ऐसा देते हैं कि यह करो ये करो ये करो, कौन करे भाई आहा। यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि जिस परमाणु की प्रतिमा बनी है, प्रतिमा यानी जो मूर्ति हम स्थापित करते हैं ना प्रतिमा जी, वह जब स्थापना में रहती है वह भी उसकी क्रियावती शक्ति के कारण से वहां आई। हमने क्या सोचा, हमने बराबर गए हम जयपुर में सिलेक्शन करके लाई तो वो अपनी क्रियावती शक्ति से आई। आपके ढसाला में पहले कोई मूल नायक नहीं हो गए ना, अदला बदली हो गए और फिर क्या हुआ, फिर दूसरे स्थापना हो गए, तो वो परमाणु आपने लाए इसलिए हुए कि नहीं, या क्या कहते?
अरे उन्होंने लाई वो तो बात है, पर हमने उसको स्थापित किया ये मानना भी मुत्यत है।
वही तो, क्या कहते हैं, वो अपने क्रियावती शक्ति के कारण से वहां आई और ध्रुवपने के कारण वहां स्थिर है, और भिन्नपने के जो अलग परमाणु थे वे वहां उत्पन्न हुए, वह उत्पन्न हुआ दूसरे आत्मा से वहां स्थापना हुई, ऐसा नहीं है ना बात। ये वर्तमान में तो ये करो ये करो ये करो यही चलता है। तीर्थंकर तुल्य जिसे निक्षेप में गिना प्रतिमा, जिन प्रतिमा जिन सारखी। ये निक्षेप क्या होते हैं मालूम है, कभी सुना है नाम निक्षेप का? हाँ, नाम स्थापना द्रव्य भाव। तो यहाँ कौन सा निक्षेप होगा जो प्रतिमा हम स्थापित करते हैं?
स्थापना निक्षेप।
आपको मालूम है कुनकुंदाचार्य ने स्थापना निक्षेप किसको कहा? वीरेश भाई आपने सुना है, अष्टपाहुड़ में है, नहीं सुना? अरिहंत भगवान की स्थापना, ये कहते हैं काष्ठ पाषाण आदि में स्थापना करना वो सच्ची स्थापना नहीं है, तो कैसी स्थापना है? तो अरिहंत भगवान को गुणस्थान पर्याप्ति प्राण संज्ञा ये सब जीव समास, इन सभी अपेक्षाओं से जानना तब हमने अरिहंत की स्थापना की। जो कुनकुंदाचार्य स्वयं कहते हो गुणस्थान बंधस्थान उदयस्थान तुम नहीं हो, ये जुदा है जीव जुदा है, 50 से 55 गाथा में कहा समय सार में, वही कुनकुंदाचार्य भगवान कहते हैं कि अरिहंत भगवान को तुम्हें अरिहंत तभी कह सकते हो उनकी स्थापना, जब उनके आप सब उसके जीव समास गुणस्थान पर्याप्ति प्राण वो सब उसमें जानेंगे। आप कहेंगे हमने कभी नाम ही नहीं सुने तो क्या जानेंगे, तो उनमें कितने होते हमारे में कितने होते क्या पता है, ऐसी बात है ना। तो हमने कहा अरिहंत का स्वरूप देखा बराबर जाना, अंतर्बाह्य तो जाना नहीं है,
इसीलिए ढासाला में वो विषय चलेगा।
तो यहाँ कहते जिन प्रतिमा जिन सारखी, यानी जिनेन्द्र की प्रतिमा है वो साक्षात जिनेन्द्र भगवान जैसी है। मुमुक्षु कहते एक ठिकाने लिखा है 10,000 तीर्थंकर, गुरुदेव श्री कहते 10,000 तीर्थंकर से अधिक एक प्रतिमा की विशेषता है। पहले भी आया था उनके प्रवचन में, आहा तारण पंथ के पंथ में मूर्ति का जिन भवन नहीं स्थापित करते, यह बात तो विरोध है, तत्व से विरोध है। क्या कहते हैं, एक तारण स्वामी नाम के दिगंबर मुनि हो गए, परम अध्यात्म के उनके जो ग्रंथ पढ़ेंगे तो अद्भुत है एक्चुअली, परंतु बाद में क्या हुआ तो ये मोहम्मदन मुसलमानों ने जो मूर्ति भंजन चालू किया तो उस जमाने में वो मूर्ति निकाल निकाल कर वहां उन्होंने शास्त्र स्थापित किए और मूर्तियों को मंदिरों में नीचे भुयार वगैरह बना के वहां गाड़ दिए थे। पर बाद में तो वही प्रथा चली, कितने ही तारण पंथियों के वो जिनालयों में अभी भी मूर्तियां मिलती है नीचे, पर बाद में प्रथा क्या पड़ी, वो शास्त्र ही विराजमान करते हैं शास्त्रों, जैसे हम विधिवत पूजन करते हैं भगवान की वैसे वो भगवान का नाम लेंगे सब करेंगे, पर वो तो शास्त्र के सामने करेंगे रोज, जिन्हें ये जिन प्रतिमा जो कहते उसके बदले में शास्त्र का ही वंदन करते, परंतु शास्त्र में क्या लिखा है क्या पता। जैसे यहाँ पर भी भगवान के दर्शन करते हैं अभिषेक करते हैं, परंतु आम जनता को तत्व ज्ञान का कुछ अभ्यास नहीं है, वैसे उनमें भी है। ये क्यों पता, क्यों हमें तो होशंगाबाद में बुलाया था ना, वो बुलाने वाले तारणपंथी थे, उनके चैत्यालय कहलाते, हाँ वहां तो 6-6 बार जाके आए, हाँ, और वो भी तत्व के रसिक है। और अभी ऐसा है कि गुरुदेव के प्रताप से कहो या तो उसमें से कितने ही अभी मूर्ति को मानने लगे, उनमें भी अभी दो ऐसे मत हो गए। हाँ, मूर्ति को मानने वाले और नहीं मानने वाले, कोई अभी भी वो हट करके नहीं मानने वाले बात वो चलती है उनमें। तो उन्होंने हमको वहां बुलाया था, तो मैंने पहले प्रवचन में बताया यहाँ लपेट के रखा है,
बंधन में रखा,
बंधन जिसको कहेंगे, सफेद वस्त्र में ऐसे बहुत अच्छी तरह से, यानी उन्होंने तो धौला जय धौला भी सारे ऐसे उसमें है, सारे ग्रंथ बहुत, यानी ये सारे जो हम ग्रंथ जो मानते हैं वो वहां भी है, और उनको वो पूजन करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं। तुमने कल कुछ भी आप लपेट के रखे गए तो अभी आदत हो गई, सुबह जाना और उसके माथा टेकना, तो कुछ भी वो वहां लपेटा हुआ है तो आप उसको वंदन कर रहे हैं, उसका स्वरूप कहाँ मालूम है। जिन बिंब देखते हैं तो वो शांत प्रतिमा तो ख्याल में आती है, भगवान का स्मरण तो होता है, परंतु खाली लपेटी हुई शास्त्रों को देखकर आपके क्या हो रहे हैं। बस एक वो आदत बनी है ना कि वहां जाके वो तो ये हमारे परम है और हम उनको नमस्कार करते हैं। तो वहां के प्रवचनकारों ने बोला आपकी बात तो सत्य है।
नहीं, क्या है, किसी को कोई अभ्यास नहीं,
अभी जैसे आम जनता है अभ्यास नहीं है, बस भगवान के सामने जाना गिड़गिड़ाना इतना ही मालूम है। वैसे वो उनकी प्रथा जो पड़ी है, क्योंकि जन्म से वही करते आए हम, उनके माँ बाप वही करते थे, वो भी वही कर रहे हैं। वहां पर भी आजकल शास्त्रों का अभ्यास वगैरह होता है, गिने चुने लोग करते हैं। हमको बुलाया था पहले तो इन्होंने कंडीशन डाली थी कम से कम 30 लोग तो आने चाहिए, तो हमें आने के लिए तैयार है। देवलाली में आते थे वो, इन्होंने बोला था साइन करके मुझे वो पर्चा दिखाना, तो दूसरे शिविर में वो लेके आए थे।
हमने बताया कि जो जो आने वाले उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और सिग्नेचर, कि हम सभी लेक्चर अटेंड करेंगे, वो आप कम से कम 30 आदमी का लाना। तो गए, मान लो फरवरी में बात हुई, मई महीने में आए, उस समय तो उन्हें 63 लोगों की साइन लेके आए थे, और एक्चुअली 200 के ऊपर लोग बैठे।
और इन दिवाली में, दिवाली के दिनों में हम वहाँ शिविर ले रहे थे, तो 200 से ऊपर लोग, बहुत बड़े बड़े चैत्यालय वहाँ पर। देखो एक कारण,
मूल बात तो वही रही गई कि वे जिन प्रतिमा को नहीं स्थापित करते, मानते नहीं, वो तो पत्थर है उसमें क्या, अरे पर स्थापना करते
वो तो पत्थर नहीं कहते, वो तो कहते वो प्रतिमा है, वो भगवान नहीं, वो प्रतिमा है। पर प्रतिमा में हमने भगवान जैसे स्थापना निक्षेप हमने माना हुआ है, और प्रतिमा को देखकर हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो चीज उनमें तो गायब ही है। धवल जय धवल में लिखा है, मिला पेज 43, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ना चौथी लाइन में, लिखा है कि मूर्ति को नहीं मानते वह अज्ञान मिथ्या दृष्टि है, मूर्ति को माने यह राग है, परंतु नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा, मूर्ति को माने वो सम्य दृष्टि होता है, ऐसा नहीं है, वो है तो राग, परंतु सम्य दृष्टि को ऐसा राग आता है, समय दर्शन होने के पहले भी होगा, तो जो मानता ही नहीं तो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, ऐसी बातें हैं बापू। क्योंकि यही तो है ना, स्थानक वासी में तो यही तो है, मूर्ति को नहीं मानते है वो, नमोकार मंत्र को मानते हैं। तो जहाँ विदेशों में हम जाते थे तो दिगंबरों की मूर्ति एक बाजू, श्वेतांबरों की मूर्ति, और बीच में वो स्थानक वासियों के नमोकार मंत्र लिखा हुआ, ये प्रथा है वहां पर। हाँ, प्रश्न पूछो। बिल्कुल योग्य नहीं है, अप्रतिष्ठित मूर्ति हो, फोटो हो, और भी कुछ है,
कैलेंडर,
ना उसका नमस्कार करना है, ना पाठ बोलना है, ना उसके कुछ अभिषेक पूजा करना है, जिसको हम स्टैचू कहेंगे, वो मूर्ति समान नहीं है। जैसे यहाँ बाहुबली के स्टैचू, वो स्टैचू है, पुतला है, वो प्रतिष्ठित रख सकते हैं, पर उसके सभी व्यवस्थाएं सभी एंगल से वो बराबर, उसका भी शास्त्रोक्त विधि से वो होना चाहिए। अब उसकी बात अधिक है तो पूछ लो आप, इसमें प्रतिष्ठाचार्यों को पूछ लो, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने माइग्रेटेड लोग आके बसे हैं, ये तो परंपरा चली है कि गृह चैत्यालय की।
मुख्य रूप से ऐसा है कि मूर्ति जहाँ रखते हैं उसके ऊपर कोई चले घूमे ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए,
और वो भी सारा छूत अछूत वो सब बराबर व्यवस्थित होना चाहिए, उसके प्रक्षाल पूजन वगैरह। हाँ, आगे बढ़ते भी ऐसी बातें हैं बापू। भगवान के समय समय के लेख अलग है। यहाँ कहते हैं आहा हा, पुद्गल तो क्रिया वाले भी होते हैं, क्योंकि परिकंपन द्वारा, परिस्पंद कहता ना यानी कंपन, परिस्पंद के द्वारा पृथक पुद्गल, भिन्न है वह पुद्गल, एकत्रित हो जाते हैं, दूसरे के साथ संयोग होता है, संयोग में एकत्रित होते हैं, नाम परमाणु परमाणु ऐसे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं, भिन्न था उसका संयोग हुआ। गाथा बहुत ऊंची है, छह द्रव्य को भिन्न भिन्न पने भाव और क्रियावती शक्ति से भेद करके निश्चय करवाते हैं। दो द्रव्य क्रिया और भाव वाले हैं और छह द्रव्य भाव वाले हैं, ऐसी स्थिति बतानी है, यानी ऐसी वस्तु स्थिति बतानी, स्थिति यानी वस्तु स्थिति बतानी है। अरे यहाँ तो थोड़ा जानपना हो जाए तो उसे ऐसा हो जाए कि आहा हा भाई मार्ग अलग है बापू। थोड़ा जानना होता है तो कहता है, उसे लगता है कि मैं कितना बड़ा दुनिया से, मैं बहुत जानता हूँ,
ज्ञान में
इसलिए। और एकत्रित मिले हुए पुद्गल पहले कौन से थे, पृथक थे, वो एकत्रित हो जाते हैं परिस्पंद के द्वारा। अब जो इकट्ठे थे तो कहते एकत्रित मिले हुए पुद्गल संयोग में आते हैं, उसमें से परिस्पंद के द्वारा पृथक यानी भिन्न हो गया, वह अपने कारण से वहां परमाणु भिन्न हो गया। समझ में आया, जैसे कि रोटी में परमाणु एकत्रित हुए तो भिन्नपने का नाश हुआ और एकत्व से उत्पन्न हुआ, टिकने से ध्रुव है, और उसका टुकड़ा हुआ वह दांत से नहीं हुआ, टुकड़ा होने की पर्याय से, भिन्न होने की पर्याय से उत्पन्न हुआ। पहले अभिन्न था ना, उसका नाश हुआ, अभिन्नपना का नाश हुआ, अभिन्न का नाश हुआ, अभिन्नपने का नाश हुआ, अभिन्न नाम संयोग पने था उसका नाश हुआ, भिन्नपने हुआ वह उत्पन्न हुआ और परमाणुपने कायम रहा। अरे रे ऐसी बातें भाई, ऐसी बात और कहाँ है, मुफ्त में रखड़ेगा। इनके छोटे भाई देव देवी को माने, ये भाई यहाँ का माने, विरासत में पैसे दिए और यह नहीं दिया।
नहीं समझे,
विरासत समझते हैं,
यानी बाप जादे उनसे पैसे मिले पर ये बात नहीं मिली, इसलिए दो भाइयों में डिफरेंस है। सच कहता हूँ, हमारे पिताजी ने पैसे तो एक भी नहीं दिए, विरासत में ये बात दी 100%।
और दूसरे मुमुक्षु है, उनका साडू है,
एक वो भी, हाँ। मैं विरासत की बात कर रहा
हूँ। मुझे लगा हो गया आपका।
नहीं नहीं, मैं बोल रहा था इतने में अपने चालू में। मुझे बिल्कुल फक्र है कि हमारे लक्ष्मी बहन जो है उनके ससुर शरद भाई, उनके घर में वो सिखाने जाते थे, रोज चलते यहाँ से मटुंगा। हाँ, आपको याद नहीं है ना, पहले
उसके पहले, हाँ हाँ हाँ, गुरुदेव वही पहले गए, हमारे घर में वही पहले जाते थे। पहले 74 में कुछ मलकापुर का शिविर अटेंड किया और वहाँ एक घोषणा हुई थी तीर्थ ने कौन सी, वो
धर्मचक्र की
वो तीर्थ यात्रा निकलने वाली थी 100 दिन वाली, वो जाना चाहते थे, और फिर वो मम्मी ने यानी हमारे सास ने भी हट किया, तो उनके दोनों के लिए फिर हमको चुना गया। मेरी बहुत इच्छा थी तो फुलफिल हो गई। तो वहां से शुरुआत, क्योंकि सारे पंडित और रोज के प्रवचन तो कंपलसरी थे ना, कितने भी यात्रा करो कितना भी ट्रैवल करो रोज के प्रवचन होते थे, और बाबू भाई मेहता, हुकुमचंद भारिल, ज्ञानचंद जी
नेमचंद काका,
नेमचंद काका रखवाल वाले, नेमीचंद पाटनी, एक से एक बढ़कर सारे ये छोटे बहू वगैरह होते, तो मुख्य तो ये तो वक्ता तो रोज के उनके प्रवचन होते ही होते थे। और फिर वो नेमा काका हमें ऐसे भी प्राइवेटली जिसको कहेंगे ना अभी दोपहर में वगैरह टाइम है तो चलो वो ले लेते थे।
वो तो नेमा का बोलते वो पेंट वाला नहीं सिखवाड़ू नहीं, मैंने तो साड़ी पहनवा वाला जो है क्यों ये पेंट वाला अत्यारे बनते नहीं, नहीं
पहले कहते थे धोती वाला ने नहीं बनाऊ पैंट वाला, क्योंकि वो यंग है कुछ पढ़ेंगे तो उपयोग करेंगे, और पैंट वालों से भी ये साड़ी वालों को पहचान पहले मैं पढ़ाऊ
क्योंकि वो स्वयं हाँ। समझेंगे और अपने बच्चों को भी वो सिखाएंगे,
वो पूरी फैमिली को सिखाती है इस तरह।
वो तो एक ऐसी बातें बताते थे कि अभी 75 में वो आज तक याद है।
उसके बाद तो शुरू ही हुआ वहाँ, फिर यहाँ जो जो आते थे किसी को यानी छोड़ा नहीं, दादर में उधर बॉम्बे साइड में कोई भी विद्वान आते थे उसको अटेंड करते थे। गुरुदेव का भी बहुत बार लाभ हुआ ना, पहले दादर में मिला, मालाड़ में 2 बार हुआ था, घाटकोपर में 2 बार आए थे
75 से आगे 5 साल,
और वहाँ सोनगढ़ भी जाते थे ना। देखो क्या कहते हैं, पर जब तक बेसिक का अभ्यास नहीं है ना तब तक ही कुछ नहीं समझना, खाली आहा हा हा समझानो का इतना ही समझता था। देखो क्या कहते हैं, हम 45 पेज पर है ना, कहाँ पर 40, हाँ देवी देवी हाँ 44 पेज पर है,
विरासत
ऊपर से तीसरी, विरासत में पैसे दिए यह नहीं दिया, और दूसरे मुमुक्षु है उनका साडू है वह भी बड़ा मूर्ख है। बहुत लड़कियां हुई उसके बाद लड़का हुआ तो कहते साई बाबा के कारण लड़का हुआ। बहुत लड़कियां हुई उसके बाद नीचे के लाइन, पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कहे वो औसा हो गया ऐसा करो।
ये कहाँ पढ़ रहे हो?
1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन। उसका छोटा भाई यहाँ अहमदाबाद रहता है, वह यहाँ का मानने वाला है, यहाँ सुनने नहीं आए, कहता है कि साई बाबा चमत्कारिक आत्मा है। आहा हा, जगत में प्राणी को रखने के रास्ते अनेक है ना, क्या करे, मुमुक्षु ते वह मर जाए तो साई बाबा तो उसे बुला ले। गुरुदेव श्री कहते कौन बुलाए, मूर्ख है वह, तो बात हुई थी ना एक भाई मर गया ना तो कह के मैंने उसे मेरे पास बुला लिया है, और मानने वाले भी कहे कैसे मैंने यहाँ बुला लिया है, आहा करोड़ोंपति आदमी, भाषण करते करते देह छूट गया। तब उन्होंने कहा कि देह छूट गया है हम क्या करें, साई बाबा को पूछा तो उन्होंने कहा जला दो अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने उसे बुला लिया है। और ये बनिए बुद्धि के बारदान, अरे रे भाई ये सब आपके बनिए की बातें, यानी वहाँ कोई विचार वगैरह है नहीं, कोई ऐसे मिल जाते हैं तो कैसे बुद्धि का भ्रम हो जाता है, जाके वहाँ नाक भी घसेंगे, नमस्कार करेंगे, पैसा देंगे और क्या क्या करेंगे।
ये बुद्धि के वारदान क्या होते हैं?
मूर्खता, बुद्धि के वारदान यानी मूर्ख लोग। और ऐसे होते हैं ना तो ऐसे जिसको उनको फंसाने वाले लूटने वाले तो मिलते ही है, क्योंकि उनको मालूम है साइकोलॉजी, ऐसे कोई ना कोई तो शिष्य मिल ही जाते हैं, तो अभी बुआ बाजी सब चलती है, ऐसी चलती है। क्या कहे, यहाँ कहते हैं कि वह शरीर जो आत्मा के संयोग में था वह भिन्न हुआ, भिन्न हुआ वह अपनी क्षेत्रांतर क्रिया से भिन्न हुआ, और एकत्रित थे उसका नाश हुआ, यानी एकत्रित पने का नाश हुआ, भिन्न की उत्पत्ति हुई, टिकने का तो कायम है, अन्य से होता है यह 3 काल में नहीं, ये जो कुछ हो रहा है वो उसके अपने परिणाम से, उत्पाद से, व्यय से और ध्रुव से। यहाँ तो संघात से और भेद से बात हुई थी ना, शरीर से मैंने आत्मा को जुदा कर दिया और मैंने मेरे पास रखा ऐसा कहने वाला बड़ा मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, उसे बनिए लोग माने। बनिए समझते ये व्यापारी, जैन में जन्मे हुए ऐसा माने। हा हा हा, वीतराग परमात्मा ने कहा हुआ ऐसा तत्व उसकी जिससे खबर नहीं, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये कोई मरता है उसको जिंदा करने वाला, उसको बुलाने वाला ये कौन है? यहाँ कहते हैं कि परिस्पंद स्वभाव वाले होने से कौन पुद्गल, परिस्पंद के द्वारा पृथक पुद्गल यानी जुदा पुद्गल एकत्रित हुआ, संयोग में इकट्ठे हुए, 2, 5, 10 परमाणु एकत्रित हुए। परिस्पंद स्वभाव वाले होने से परिस्पंद के द्वारा पृथक पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए और एकत्रित मिले हुए पुद्गल पुनः पृथक हो जाते हैं, एकत्रित है वे पृथक हो जाते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से वे उत्पन्न होते हैं। एकत्रित है और पृथक हुआ तो उत्पन्न हुआ, टिकते हैं और पूर्व से नष्ट होते हैं। समझ में आया? यह तो पुद्गल की बात कही। आप एटॉमिक एनर्जी में थे ना, तो एटम में क्या होता है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये तो कह रहे परिस्पंद हो रहे उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सुनिश्चित होते हैं एक एक मॉलिक्यूल आइटम के वगैरह अलग अलग जो। हाँ हाँ, मालूम है वो तो इलेक्ट्रॉन तो, वो तो घूमते रहते उसके बहुत स्पीड से। अभी और भी परिस्पंद एक एक सिंगल परमाणु में भी, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी वो तो परमाणुओं का बिना है, बिल्कुल होते ही है ना, तो उसमें से जुदे निकल जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री जब हम पढ़ते थे, आज की केमिस्ट्री तो बहुत और एडवांस हो गई। हाँ, तो कहते ना जिसको एटम कहते थे उस जमाने में, यानी वो मूल द्रव्य कहते थे उसको, जैसे सोने का जो धातु उनका जो मूल द्रव्य है, तो उसमें वो हाफ लाइफ क्या कहते थे? क्यों? यानी उसमें वो जो कुछ निकल जाते हैं ना, वो तो वो एटम बने वो अन्य रूप से हो जाता है कुछ। हाँ, यानी उसमें जो कुछ उसमें से कुछ परमाणु निकल जाते हैं ना। हाँ, ये तो बहुत लंबे लंबे काल की बात है वो। हाँ, अनंत काल। हाँ, आप कुछ कह रहे थे?
हम औरंगाबाद गए थे, उस समय वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के सबसे बड़े
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट,
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो भी आते थे सुनने को। तो वहाँ ये पुद्गल की हमने बात बताई, तो आप एटम एटम कहते वो परमाणु नहीं है, वो तो अनेक पुद्गल परमाणु का स्कंद है।
नहीं, वहाँ तो स्कंद कैसे जुड़ते हैं? वो तो द्विअणु ये होते ना, के कारण कैसे बंद होता है उसकी बात चली थी।
वो कहने लगे, अरे आप तो हमारा साइंस हमको सिखाते हैं, ये तो हमारा साइंस है। मैंने कहा नहीं, ये जिनेंद्र परमार
वो यूनिवर्सिटी ले गए थे सब दिखाने के लिए। वो कहते हम तो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप तो इसको ऐसा सिखाते हैं जैसे केजी के बच्चों को सिखाते हैं। देखो एक एक परमाणु में इस परिस्पंदन है। हाँ, वो परिस्पंदन के द्वारा लिखा ना, एकत्रित होते हैं उसी के द्वारा भिन्न भी होते हैं। 45 पेज देखो, ये नया पैराग्राफ, यहीं से शुरुआत करनी है अभी कि सेकंड लाइन पढ़ी थी हमने? यह तो पुद्गल की बात कही, मिले हुए पुद्गल पुनः पृथक हो जाते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से वे उत्पन्न होते हैं। पृथक हुआ इस अपेक्षा से उत्पन्न हुआ, क्योंकि पहले जो पर्याय थी वो बदलकर अब दूसरी हुई, तो जो नई पर्याय हुई उस रूप से उत्पन्न हुआ। एकत्रित थे इस अपेक्षा से नाश हुआ, परमाणु पने कायम है, ऐसी बात है। अब जीव की बात करते हैं। अभी यहाँ पर भी जीव में भी परस्पंदन बताए, उसमें भी वो तो संघात और भेद को समझाएंगे। जीव भी भाव वाले होने से उत्पन्न होता है, टिकता है और नष्ट होता है। परिणमन द्वारा उत्पन्न होता है, पूर्व के वो के है, पूर्व के परिणाम का नाश होता है और ध्रुव तो कायम रहता है। अब यहाँ यह कहते हैं परिस्पंद स्वभाव वाले होने से, अब जीव की बात आई, जीव में भी कंपन क्षेत्रांतर की योग्यता होने से, अपने परिणमन की क्षेत्रांतर होने की अपनी योग्यता से होने से, परिस्पंद के द्वारा नवीन कर्म नो कर्म, एक वो तो जोड़ कर बताए कि जो नए कर्म और नो कर्म रूप पुद्गलों से भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होने से, क्या कहना चाहते हैं? ये हर समय जीव नए नए पुद्गल परमाणुओं को, शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करता है, क्यों? परिस्पंद के द्वारा वो इकट्ठा होता है ना, उससे जुड़ जाता है। शरीर और कर्म जो भिन्न है उसके साथ जीव भिन्न है, वह उनके साथ संयोग में आ जाता है। तो संयोग में आया वह अपनी क्रियावर्ती शक्ति के कारण आया, क्रियावर्ती नहीं, क्रियावर्ती शक्ति के कारण से आया। संयोग में आया वह उत्पन्न हुआ, यानी संयोग पने से उत्पन्न हुआ। पहले भिन्न था, उसका नाश हुआ और जीव पने कायम रहा। अब जीव की ओर से बात बता रहे हैं, ऐसी बातें हैं, समझ में आया? फिर से, यह जीव जो है वह शरीर और कर्म जो पृथक है वे संयोग में आ जाते हैं, वह क्रियावती शक्ति के कारण से आते हैं। यानी पूरा वहां शरीर बना हुआ है वो नजदीक आता है, ऐसा नहीं लेना है। परमाणु जो भिन्न पृथक थे वो जीव के परिस्पंद के द्वारा वो परमाणु वहां आते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, हम कहेंगे उसके अपनी भाषा में। और वहां शरीर की रचना होती है, कर्म भी पुराने कर्मों के साथ आकर उसका स्कंद बन जाता है। क्योंकि ये जो योग है, कंपन है, उसका उसकी परिभाषा क्या है मालूम है? लक्ष्मी आपको याद है? हाँ, परंतु उसकी परिभाषा क्या है? कर्म नो कर्म का आकर्षण शक्ति, उसको योग कहा, कर्माकर्षण शक्ति, इसको कर्माकर्षण शक्ति कहते हैं। हाँ, कर्म और नो कर्म को आकर्षण करने की शक्ति। आकर्षण नहीं, वो क्यों, कुछ बाहर से कुछ आता ही नहीं है, उसी प्रदेशों में जो है वो कारमाण वर्गणा थी, वो कर्म रूप होना, उसी को कहेंगे कर्म का आना। आना यानी कहीं बाहर से आते हैं, ऐसी बात नहीं, उसका नाम क्या है, आश्रव यानी आना। पर आता है अर्थ का है, आता है कहीं से, तो बाहर से तो आता नहीं है, तो उसको आता है क्यों कहा? तो कारमाण वर्गणा थी, अन्य उसकी अवस्था थी, वो कर्म रूप परिणमित हुए, या जो शरीर के जो आहार वर्गणा थी वो शरीर रूप परिणमित हुई, उसी को आना कहते हैं। योग जीव, जीव में होता है, यहाँ जीव का है ना, परिस्पंद जीव की बात चल रही है। तो अपनी क्रियावती शक्ति के कारण है। फिर से देखो नीचे से तीसरा पैराग्राफ, फिर से, यह जीव जो है वह शरीर और कर्म जो पृथक है वे संयोग में आ जाते हैं, वह क्रियावती शक्ति के कारण से आता है। क्षेत्रांतर होने से कर्म और शरीर के साथ संयोग हुआ, वह उत्पत्ति हुई। भिन्न था, उसका नाश हुआ, जीव जुदा था और वो कारमाण वर्गणा उससे कुछ लगते नहीं थे, तब हम जीव के कोई संबंधी नहीं कहते थे, हमें भले वो आकाश के उसी प्रदेश में भी क्यों ना हो, परंतु जब जीव के वो परिणामों के निमित्त से कहो और वो परिस्पंदन के कारण अब वो जीव के साथ जुड़ जाते हैं, तो जीव पने कायम रहा, ऐसी बातें हैं। यानी भिन्न था, उसका भिन्न पने का नाश हुआ, यानी क्या, संयोग की उत्पत्ति हुई, और जीव तो जीव रूप से कायम रहा, उसके स्वभाव से ऐसा हुआ, ऐसा कहते हैं, दूसरे से हुआ नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा जो कर्म और शरीर से भिन्न है वह कर्म और शरीर के साथ संयोग रूप आया, तो संयोग रूप में आया वह परिस्पंद के कारण उत्पन्न हुआ, परंतु भिन्न था उसका नाश हुआ, भिन्नता का नाश हुआ और संयोग से उत्पन्न हुआ, जीव पने कायम टिकता है, ऐसी बातें। एक एक जीव जब कर्म और नौकर्म जो भिन्न है उसके साथ संयोग में आते हैं, तो अपनी क्रियावती शक्ति से आए, क्रियावती शक्ति के कारण से संयोग उत्पन्न हुआ, भिन्न था उसका नाश हुआ, संयोग से उत्पन्न हुआ, जीव पने कायम है, ऐसा स्वरूप। वितराग परमात्मा के अलावा ये बात वर्तमान संप्रदाय में लोप हो गई, लोप हो गई ना, व्यू रही नहीं। ये करो ये करो, मूर्ति स्थापो, मंदिर करो, आहा हा, श्वेतांबर के साधु तो मंदिर होते हो वहां खड़े रहे, खुद बताएं और सब कुछ करें। एक बार गए थे तब साधु सब करते थे इसे, ऐसा करो ऐसा करो, और क्या है भाई, आहा हा। यहाँ परमात्मा सर्व,
एक एक मिनट,
हाँ,
यहाँ जो कह रहे हैं कि श्वेतांबर साधु सामने खड़े रहकर सारी व्यवस्था देखते थे मंदिर कैसा बनना, उसमें क्या खराबी है, ये मेरा प्रश्न। वो तो मंदिर बनवा रहे थे ना,
अच्छा काम कर रहे थे, पहले तो महान मिथ्या थे, मैं कर सकता हूँ, और वो जो मुनि का काम है, मुनि का काम तो आत्मलीनता है, जंगल में रहे,
सब है ना, पहले में पहले उसके लिए पैसा इकट्ठे करते हैं, मूल में वहीं से शुरुआत होती है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, फिर वही तो चल रहे हैं अभी, श्वेतांबर दिगंबर क्या है, आरंभ से तो होती है, परंतु ये कितनी, ये परिग्रह कितना इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, वो बोलिया बोलना, ये क्या उनका थोड़ा ही काम है, अभिषेक करवाना क्या है, वो जो स्वयं स्नान व्रत वाले हैं वो अभिषेक की बोली करो या जाके अभिषेक करो, ये मुनि का स्वरूप थोड़े ही है। चलो चलता रहता है,
नहीं नहीं आजकल तो बात
श्रावक का काम है, हाँ चलता है सब। अब बड़ी वो इधर हमने इसे गांव गांव में भी देखा है, नहीं हम कोई चैनल नहीं देखते, सुनते हैं बहुत सारी बातें, लोग सुनाते हैं। देखो 40 पृष्ठ पर आए हम, अभी कौन क्या करता है छोड़ दो, यहाँ तो हम देखेंगे
अपने को क्या करना है।
यहाँ परमात्मा सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्य देखे, उसमें 6 द्रव्य परिणमन वाले हैं, परंतु क्रिया शक्ति वाले 2 है, जीव और पुद्गल। धर्मासिकाय में क्रियावती शक्ति नहीं है, इसलिए अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है ऐसा नहीं। तो देखो जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, तो गमन करने में वो निमित्त रूप से है, वो स्वयं चलने वाले नहीं है। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और असंख्य काल द्रव्य जहां है वहां है, जहां है वहां है, उसका अर्थ क्या है, क्षेत्रांतर नहीं करते, निष्क्रिय। एक एक आकाश के प्रदेश में काल द्रव्य है, ऐसे असंख्य प्रदेश में असंख्य काल द्रव्य है, जहां है वहां है, काल का क्षेत्रांतर नहीं होता। धर्मास्तिकाय जहां है वहां है, क्षेत्रांतर नहीं होता। अधर्मास्तिकाय जहां है वहां है, क्षेत्रांतर नहीं होता। आकाश जहां है वहां है, क्षेत्रांतर नहीं होता। क्षेत्रांतर होने की क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल 2 द्रव्य में है, ऐसा अजीव का तत्व है, ऐसे जानना चाहिए। 9 तत्व की श्रद्धा कहते हैं ना, 9 तत्व में जीव और अजीव आया कि नहीं, अजीव क्या चीज है और जीव क्या क्या स्वभाव है, उसका ज्ञान तो करना पड़ेगा कि नहीं, ज्ञान बिना श्रद्धा किसकी। तो मेरा प्रश्न है, ये 7 तत्व कहो 9 तत्व कहो, वो सारे गेय है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गेय है कोई है यह है क्या है? हाँ, तो यहाँ तो उन ज्ञान के लिए क्या है सब?
ज्ञान के लिए क्या?
हाँ, पहले में पहले सभी गेय है, गेय ने उसका जैसा स्वरूप है वैसा जानने योग्य है। एक बात तो जानकर वो कैसे रखने लायक है, आदरने लायक है, तो श्रद्धान की अपेक्षा है ये गेय उपाधि होते, ज्ञान की अपेक्षा नहीं। क्योंकि छोराला में बताया ना, जो का त्यों श्रद्धान, उसमें वो तीन में विभाजित होते हैं। कौन से? कुछ गेय कहे, कुछ है कहे, कुछ उपाधेय कहे। ज्ञान की अपेक्षा गेय है गेय उपाधि नहीं होते, हाँ श्रद्धान की अपेक्षा होते। यहाँ लिखा ना, ज्ञान बिना श्रद्धा किसकी। पहले सातों को पहले में यथार्थ स्वरूप क्या है वो जाने, फिर उसमें हमारी विपरीतता क्या हो रही थी उसको समझे, और फिर सही श्रद्धान कैसा होना चाहिए गेय है उपाधि उसको समझे, तब हमने सात तत्वों को आगम से समझा। फिर सच्चा समझा कब कहेंगे, जब अपने उपाधेय से अपने जीव तत्व का आश्रय लेकर उसका अनुभव करेंगे, तो आश्रय भिन्न है ऐसा अनुभव में आया, तब हमने उसको हेय किया या हेय जाना। नहीं तो फिर हमने वो ना नहीं, वो कौन सा हेय है, ये कौन सा उपाधेय, हमने रट लिया उत्तर एकदम तैयार, उसको हेय किया ऐसा नहीं कहेंगे। हेय उसके लिए कब हुआ, जब उसने आश्रय से जुदे अपने जीव तत्व का अनुभव किया यानी समय दर्शन किया, तब उसने आश्रय जो भिन्न है उसको भिन्न तरीके अनुभव करके उसने उसकी प्रतीति की, तब उसने उसको बराबर हेय उपाधि उसकी श्रद्धांत सही हुआ ये कहेंगे। यहाँ लिखा है ना, जैसा स्वभाव है उसका ज्ञान तो करना पड़ेगा कि नहीं, ज्ञान बिना श्रद्धा किसकी, विश्वास कैसे बैठे, भारी काम भाई। आप कहें नहीं नहीं, भगवान ने कहा है तो सच्चाई होगा, हमारा विश्वास है, उसको विश्वास नहीं कहते। ये अनुभव के ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, तब तक का श्रद्धान वो आगम का ज्ञान है, उसको श्रद्धा में नहीं, उसको ज्ञान ही कहेंगे, क्योंकि वो आगम से जाना हुआ है, अपने अनुभव से नक्की क्या हुआ नहीं है। मुमुक्षु ते बहुत बोझा हो गया, ये बोझा लगता है, दुनियादारी की कोई बात बोझा नहीं लगते है। गुरुदेश यह तो हल्का हो जाए इसी बात है, विपरीत मान्यता से उल्टी दृष्टि से छूट जाए, ये विपरीत मान्यता भ्रांति का बोझा था वो निकल जाए ऐसी बात है। पूरी दुनिया का वो तो कर्ता होकर बैठा है ना, सारा बोझा सारा टेंशन लेके माथे पे बैठा है, तो होता स्वयं जगत परिणाम ऐसा है, जब ख्याल में आवे तो पूरा बोझा उतर जावे। कहते हैं उल्टी दृष्टि से छूट जाए, ये हीरे पर हथौड़ी पड़ती है ना। यहाँ कहते हैं जो भिन्न है उसका संयोग हुआ, वह संयोग में उत्पन्न हुआ यानी संयोग से उत्पन्न हुआ, भिन्न था उसका नाश हुआ यानी भिन्न पने का नाश हुआ, और परमाणु पने कायम रहा, वह परमाणु से हुआ है। ये जो भिन्न पना पड़ना अन्य दूसरे परमाणु के साथ संयोग होना और स्वयं ध्रुव रहना, वो परमाणु स्वयं अपने से कर रहा है, उससे हुआ है। घिसने वाला ऐसा कहे कि मैं घिसता हूं तो वह विपरीत मान्यता है। ये घिसने वाला किसको घिस रहा है, किसके रेफरेंस में किसको घिस रहा है? कौन क्या घिस रहा है,
क्या घिस रहा है पूछ रहे,
मेंदु को बुद्धि को घिस रहा है, किसको घिस रहा? देखो ऊपर क्या बताए, ये ऊपर किसको बता रहे,
दूसरे लाइन में,
दूसरी लाइन में हीरे पर हथौड़ी पड़ती है यानी वो कोई हीरा है, तो उसी के संदर्भ में कहते घिसने वाला ऐसा कहे, उसके जो पहलू पाड़ते हैं ना पहलू, तो वो तो हीरे विशिष्ट एंगल से उसको घिसने पड़ते हैं। आजकल तो मशीन में आते, पहले तो जमाने में तो कारीगर होते थे सारे, तो घिसने के कारण हुए कि नहीं, तो क्या कहते घिसने वाला, वो कारीगर कहता है कि मैं करता हूँ, कहते कि ये विपरीत मान्यता है। वो परमाणु वहां से जो छूटे पड़ रहे घिसने से, वो तो उसके अपने स्वयं की योग्यता से हो रहे। ऐसी प्रभु की बात है। वीतराग त्रिलोकनाथ वहां रात्रि को कहा था कि शास्त्र में ऐसा कहा है कि एक जीव ईश्वर को कर्ता मानने वाला है, जगत का ईश्वर कर्ता, और जैन में रहे उसे साधु नामधारी या गृहस्थ जैन नामधारी। नामधारी क्यों कहा? वो नाम लेने के लिए, तत्व ज्ञान का तो पता नहीं है, सच्ची वस्तु स्थिति मालूम नहीं है। और क्या मानते हैं? मैं छह काय जीव की रक्षा कर सकता हूँ, छह काय के जीव की रक्षा कर सकता हूँ, तो दोनों एक से कर्ता हुए, यानी दोनों समान हुए। कौन? जो ईश्वर को कर्ता मानने वाले और ये अपने को छह काय की रक्षा करने वाले, यानी इसने भी अपने को कर्ता मान लिया इन सब का। समझ में आया? हा हा, समयसार सर्वविशुद्ध अधिकार में है, रक्षा करूं इसका अर्थ यह है उसने रखा, उसने बनाया। ईश्वर जैसे जगत को बनाए वैसे यह छह काय को रखे यानी बनाए। आहा हा, छह काय की रक्तया मैंने पाली, यानी कि मैंने उन्हें रखा। वह तो ईश्वर कर्ता माना या छह काय की क्रिया का कर्ता माना, दोनों मिथ्या दृष्टि है। कठिन बात। स्थानकवासी में कहे कि दया ते सुखनी वेलडी, वेलडी समझते हैं? वेल, वेल, हाँ, ये सॉफ्ट उसका क्या, वेलडी ये सुखाची वेल। दया ते सुखनी खान, अनंता जीव मुक्ति गया। ये सब पर की दया को ही वो तो धर्म मान के बैठे। हमारे भी बताते हैं दया धर्म का मूल है, और पर वो स्वदया से शुरुआत होती है। पर की दया, आहा हा, अब यही रुकेंगे हम, बड़ा पैराग्राफ है ना, क्योंकि प्रश्न का उत्तर भी तो पढ़ना पड़े। हाँ ऐसा ही है, व्यवहार से उनका शुरुआत होती है ना। ये जब वो कैलाश संजय हमको वो तो सिखाते थे ना, उन्होंने वो पुस्तकें निकाली, सात पुस्तकें उनके, कैलाश संजय बुदनचर वाले। हाँ, तो अस्तित्व गुण के उसमें तो क्या क्या, तो ईश्वर जगत का करता है, रक्षण करता है, नाश करता है, इस बुद्धि का नाश होता है, फिर कर्म उत्पन्न करता है, कर्म नाश करता है, कर्म रक्षा करता है, उस बुद्धि का नाश होता है, मैं पर का करता हूँ, वो तीन बुद्धि वहां लेना, पर मेरा करता है, ये कितना हमसे बिल्कुल रटवा लिया था उन्होंने। फट 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 ऐसे हमको बोलना पड़ता था। चलो यही रुकेंगे। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। वीरेश भाई।